पृष्ठ संख्या 54। राज दरबार तथा बाद में तोकुगावा के शासनकाल में दाइमियों के पास पर्याप्त अवकाश होने के कारण जन सामान्य ने विस्तृत एवं अत्यंत परिष्कृत शिष्टाचार का विकास कर अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान किया। जापान का यह शिष्टाचार लोक प्रसिद्ध है। जापान का चाय पान समारोह, जिसके अनेक संप्रदाय तथा सुनिबद्ध नियम है, सुगंधित द्रव्यों को जलाने तथा उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया का सुविस्तृत एवं सुव्यवस्थित कला के रूप में विकास, समुराई की तलवार के निर्माण व अलंकरण की कला, इन सबके मूल में उनकी अत्यधिक सौंदर्य प्रियता की भावना ही निहित है। नृत्य कला, जिसका आरंभिक ऐतिहासिक काल के आरंभ से होता है और जिसका उद्भव सूर्य देवी के काल से माना जाता है, अधिकांशतः धार्मिक अवसरों के लिए ही प्रचलित थी। उनकी यह सौंदर्य प्रियता आधुनिक काल में कभी कभी वाणिज्यिक क्षेत्र में देखने को मिलती है, परंतु इसका प्रचलन आज भी है और यह जापान की अपनी एक खास विशेषता है। प्राचीन जापान के साहित्य के बारे में कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं है। जापानी साहित्य पर भी चीन का जबरदस्त प्रभाव पड़ा, यद्यपि यह प्रभाव ललित कलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की तुलना में कम ही था। इसने गद्य के समान ही कविता के क्षेत्रों में प्रमुखतः विदेशी आदर्शों का ही अनुमान किया। अपने विचित्र नियमों के कारण यहाँ की कविता का पश्चिमी देशों की भाषाओं में ठीक-ठीक अनुवाद करना कठिन है। जापान की अपनी नाट्य कला थी जो शिंतो धर्म से संबद्ध थी, जैसा कि आरंभ में उल्लेख भी किया जा चुका है। बाद में नाट्य कला पर बौद्ध विचारों का गहन प्रभाव पड़ा और कालांतर में यह धर्म निरपेक्ष बन गई तथा अपने स्वरूप और विषय वस्तु के कारण काफी लोकप्रिय भी हुई। चीन, भारत तथा सेमेटिक जातियों के समान जापानियों ने दर्शन, नीतिशास्त्र और धर्म के क्षेत्रों में अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति का परिचय नहीं दिया। जापानी लोग अपने से भिन्न विदेशी प्रणालियों को एकमात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर ही संतुष्ट हो गए तथा विदेशी योगदान पर ही निर्भर रहने लगे। चीनी दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन तथा कभी-कभी उनकी आलोचना भी की जाती थी। कुछ ऐसे बौद्ध धर्म के अनुयायी भिक्षु अवश्य प्रकाश में आए, जिनकी विचार पद्धति पर्याप्त स्वतंत्र थी और जिन्होंने नए पंथों की स्थापना की, परंतु मौलिकता में महान दार्शनिक की कोटि का कोई भी जापानी पैदा नहीं हुआ। पारिवारिक संगठन प्राचीन जापान की एक ऐसी विशेषता थी जो आधुनिक युग की पूर्णतया भिन्न अवस्थाओं में भी यथापूर्व अस्तित्व बनाए है। यह विशेषता जापान के जीवन में सदैव विद्यमान रही है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपने माता पिता के प्रति निष्ठावान होना, उनके जीवन काल में उनकी सेवा करना तथा मरणोपरांत उनका आदर करना धर्म है। परिवार क्रम पुरुष उत्तराधिकारी द्वारा अनवरत रूप से चलता रहना चाहिए, ताकि पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने वाले वंशजों का अभाव न हो जाए। सभी को समान रूप से विवाह करने की अनुमति थी। यदि किसी के संतान न हो तो अपनी वंश परंपरा बनाए रखने के लिए उसे पुत्र को गोद लेने की अनुमति थी। माता-पिता की आज्ञा का पालन करना एक मुख्य सद्गुण समझा जाता था। व्यक्ति की अपेक्षा परिवार का अधिक महत्व था और प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिवार की इच्छाओं के अनुकूल अपनी इच्छाओं को ढालना आवश्यक था। इन परिस्थितियों में पश्चिम का व्यक्तिवाद उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता था। चीनी शिक्षाओं और आदर्शों पर इन का प्रभाव सर्वोपरि था। यहाँ चीन की अपेक्षा पत्नी अपने पति की अधिक आज्ञाकारिणी होती थी। पत्नी से पूर्ण आज्ञा पालन, आत्मविलोपन और स्वामी भक्ति की आशा की जाती थी, जबकि पति बेवफा हो सकता था और स्वेच्छा से जब चाहे तलाक दे सकता था। अपने क्षेत्र में स्त्री को उच्च से उच्च सम्मान मिल सकता था, लेकिन यो वह सदा ही अपने स्वामी के अधीन होती थी। जापान की पत्नियों में वास्तविक आकर्षण एवं सौंदर्य का भी अभाव न था। उच्च वर्गीय स्त्रियां शिष्टता की प्रतीक थी। उनका बच्चों के आरंभिक जीवन पर गहन प्रभाव पड़ता था, अतएव प्रत्येक आने वाली पीढ़ी पर उनकी इन गुणों की अमिट छाप पड़ती थी। यद्यपि सामंत वर्ग की स्त्रियों का कार्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन निश्चय ही वह प्रशंसनीय था और उसका प्रभाव चिर अस्थायी था। अपनी अत्यधिक पतिभक्ति तथा आत्मविलोपन द्वारा पत्नी पति को भी अपने आदर्शों पर कायम रहने तथा अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान बने रहने की प्रेरणा देती थी। समाज के निम्न वर्ग की स्त्रियां वास्तविक रूप से अपने पति की सहायिका होती थी और प्रायः जीविकोपार्जन में भी वे पति के साथ कंधे से कंधा भिराकर चलती थी। यहाँ की राजगद्दी पर सामग्रियां भी अधिष्ठित हो चुकी हैं, परंतु गत कुछ शताब्दियों में केवल दो सामग्रियों को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्राचीन जापान में धर्म एवं नीति शास्त्र। धर्म के क्षेत्र में जापानियों ने कोई उत्कृष्ट कोटि का मौलिक योगदान नहीं दिया। वे धार्मिक वृत्ति के थे और धर्म में उनकी गहन आस्था थी। इसी तीव्र निष्ठा के कारण उन्होंने एक बार जिस धर्म को स्वीकार कर लिया, उसके लिए वे अपना जीवन तक अर्पित करने को तत्पर रहे। ईसाइयत के दमन का दृष्टांत हमारे सामने है। उनके धार्मिक विचार अधिकांशतः सौंदर्य अनुभूति एवं जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण से प्रभावित प्रतीत होते हैं। वे न तो दर्शन एवं धर्म के क्षेत्र में मौलिक विचारों की ओर प्रवृत्त हुए और न ही नीतिशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने कोई परिवर्तन किया। अपने धार्मिक विश्वासों के चयन में वे प्रायः उदार रहे हैं। ये विश्वास या तो विदेशियों से उद्भूत है या विदेशी विचारों से अत्यधिक प्रभावित है। इनके आदिम धार्मिक विश्वास बहुत ही सीधे सादे थे। वे बहुत से देवताओं को मानते थे जिनका सृजन उन्होंने जगत, जीवन एवं राष्ट्र के सृजन की व्याख्या करने के लिए किया। वे सूर्य देवी तथा अन्य अनेक देवी देवताओं को मानते थे। महान योद्धाओं की मृत आत्माओं के प्रति आदर भाव प्रदर्शित किया जाता था। उनके यहाँ देवताओं की मूर्तियों, विशाल चैत्यों तथा पुरोहित वर्ग का अभाव था। तत्कालीन नीति शास्त्रीय आदर्शों का धार्मिक विश्वासों के साथ कोई संबंध न था। एशिया महाद्वीप के विचारों एवं परंपराओं के प्रभाव के कारण वहाँ के मूल धर्म का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा की शक्ति को दृढ़ता तथा उसके दैवीय उद्भव को महत्व प्रदान करने के लिए इस आदिम धर्म में कुछ परिवर्तन कर दिए गए थे। यह आदिम धर्म आज की ही तरह कई शताब्दियों से प्रधानतया राज परिवार से ही संबंध रहा। बौद्ध धर्म के आगमन पर पहली बार वहाँ के आदिम धर्म में आत्म सजगता की भावना पैदा हुई और उन्होंने अपने धर्म को सिंतो नाम दिया। सिंतो मूलतः चीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है देवों का मार्ग, जो बुपो अर्थात बुद्ध के उपदेश से भिन्न है। कुछ काल तक तो ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बौद्ध धर्म सिंतो धर्म को आत्मसात कर लेगा, क्योंकि जापान के चतुर भिक्षुओं ने जापान के देवताओं को बौद्ध संतों और देवताओं का अवतार माना। फिर भी राज परिवार तथा देश भर में चैत्यों या देवायतनों में सिंतो धर्म का अस्तित्व बना रहा। तोकुगावा के शासनकाल में कुछ विद्वानों ने, जो विदेशी तत्वों के विरुद्ध देशज तत्वों पर अधिक जोर देते थे, सिंतो धर्म को पुनर्जीवित किया तथा उसमें विद्यमान विदेशी तत्वों को निकालकर उसके परिशोधन का प्रयत्न किया। तोकुगावा काल के बाद इस धर्म ने आधुनिक युग में प्रवेश किया और सम्राट की पुनः स्थापना से ही प्रशासन की ओर से इस धर्म को अधिक शुद्ध और अंतिम रूप को स्वीकृति मिल गई। उसके चैत्यों की रचना आरंभ से ही अत्यधिक सादे ढंग पर हुई, जो किसी भी अन्य रचना की अपेक्षा जापान के आरंभिक प्रसादों का यथार्थ प्रतिनिधित्व करती है। इन चैत्यों के अभिक्षक के रूप में पुरोहितों का एक प्रशासन मंडल होता था, परंतु एक वर्ग के रूप में वे पूर्ण अधिकार संपन्न नहीं थे। इन चैत्यों में कोई मूर्ति नहीं होती थी, लेकिन देवता के चिन्ह के रूप में सामान्य एक तलवार, सीसा या रत्न होता था। उनका विश्वास था कि वे चिन्ह सूर्य देवी ने राज परिवार के पूर्वजों को प्रदान किए थे। चैत्यों की आगे तोराई अर्थात अलंकृत प्रवेश द्वार होता था। सिंतो धर्म के अंतर्गत न तब कोई नीति पत्ती थी और न अब है, इसलिए इसमें नैतिक एवं आध्यात्मिक अपराध नाम की कोई चीज न थी। इसके धार्मिक अनुष्ठान आत्मशुद्धि, सम्राटों राष्ट्रीय वीर पुरुषों तथा पूर्वजों की आत्माओं के प्रति सम्मान प्रदर्शन, राष्ट्र के लिए ईश्वर से वरदान की याचना तथा अनिष्ट से रक्षा की प्रार्थना तक ही सीमित है।